मुख्य समाचारों में, मेलबर्न में चल रही है क्वाड गठबंधन की बैठक। लेबर नेता ने चीन के साथ पार्टी के संबंधों के दावों का दिया जवाब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन ओशन शिखर सम्मेलन में एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधन। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा कथित क्वाड गठबंधन की एक बैठक के लिए मेलबर्न में हैं। भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड गठबंधन की ये बैठक हो रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए चार देशों ने रणनीतिक और राजनयिक ब्लॉक में एक साथ ये गठबंधन किया है। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अमरीकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने रूस द्वारा यूक्रेन पर संभावित आक्रमण पर बढ़े वैश्विक तनाव के समय इस बैठक के लिए मेलबर्न की यात्रा की है। श्री मॉरिसन ने बैठक में कहा है कि वो सुरक्षा, आर्थिक और अन्य खतरों पर साझा मूल्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्वाड भागीदारों के समर्थन की सराहना करते हैं।
The things we discuss today are principally how we will continue to always stand up for our values, which is what unites us most. Secondly, I think in doing so, we stand up to those who would seek to coerce us. And as I understand from our Quad partners, none of you understand better than we do. And that is a great comfort to us, that the coercion and the pressure that Australia has been placed under. We greatly appreciate your support.
लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि चीन के साथ उनकी पार्टी के संबंधों के बारे में फेडरल सरकार की हालिया टिप्पणियों से पता चलता है कि वो अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बेताब है। रक्षा मंत्री पीटर डाटन ने गुरुवार को संसद में दावा किया कि उनके पास सुरक्षा सलाह थी कि आगामी फेडरल चुनाव में श्री एल्बनीसी चीन के पसंदीदा उम्मीदवार थे। उन्होंने आज सुबह एक रेडियो साक्षात्कार में उन टिप्पणियों को दोहराया। इस बीच 9 समाचार पत्र रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक चीनी जासूसी रिंग ने उनके प्रति सहानुभूति वाले सांसदों को निर्वाचित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स में लेबर उम्मीदवारों को स्थापित करने का प्रयास किया था। श्री अल्बनीसी का कहना है कि वो एजीओ के महानिदेशक से नियमित रूप से बात करते हैं और उनके उम्मीदवारों के बारे में कभी भी कोई चिंता नहीं जताई गई।
I understand the government's desperate for distractions at the moment, but I say to them that national security is too important to engage in game playing such as what we saw on the floor of the parliament yesterday, however much the government needs a distraction.
एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि लिंग वेतन अंतर खत्म हो ये अभी नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलियन महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन $25,800 प्रतिवर्ष कम कमाती हैं। वर्कप्लेस जेंडर इक्वालिटी एजेंसी के जेंडर इक्वालिटी स्कोर कार्ड ने ये भी पाया कि 10 बड़े ऑस्ट्रेलियन नियोक्ताओं में से 6 ने लिंग वेतन अंतर को बंद करने में कोई प्रगति नहीं की। 100 से अधिक कर्मचारियों वाले निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से एकत्र किए गए डेटा में पाया गया कि 85% अपने पुरुष कर्मचारियों को महिला कर्मचारियों की तुलना में अधिक भुगतान करते हैं। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस फेडरल सरकार को दोष दे रही हैं कि उसने इस लैंगिक वेतन अंतर को बंद करने के लिए कोई नीति या विधायक परिवर्तन नहीं किया। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वेतन वृद्धि की मांग शामिल है, जिसमें से कई ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम वेतन पाने वालों में हैं और जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। नोवावैक्स COVID-19 वैक्सीन का रोल आउट उम्मीद से एक सप्ताह पहले सोमवार 14 फरवरी से ही शुरू होगा। थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन की तेजी से समीक्षा करने के बाद इसे 100% अनुमोदन रेटिंग दी। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि नोवावैक्स में 3 सप्ताह के अंतराल के साथ 2 खुराकें होंगी।
Those that for their own personal circumstances have either waited or been unable to take the other vaccines, well, this is a new choice. We already have one of the highest rates of vaccination in the world. But after today, there are no excuses for anybody.
Western Australia में 51 नए संक्रमणों के साथ कोविड मामलों में उछाल देखा है. राज्य ने महामारी की शुरुआत के बाद अपनी दूसरी कोविड 19 मौत की भी सूचना दी. ये व्यक्ति 70 की आयु के दशक में है जिसने टीका नहीं लगाया था. प्रीमियर मार्क मैकगवन का कहना है कि अब ओमिक्रॉन सही मायनों में राज्य में आ चुका है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है.
The news of 51 local cases may shock some, and we can expect higher numbers in the weeks to come. But I can assure all Western Australians, it is not a cause for panic, but it is a reminder to take Omicron seriously. To stay home when sick, to get tested, to follow the public health measures, and most importantly, to get vaccinated.
Victoria में सोमवार 14 फरवरी को कोड ब्राउन को समाप्त करने की योजना है, क्योंकि कोविड अस्पताल में मरीजों में लगातार गिरावट है और कम कर्मचारियों के अवकाश भी हैं. ये आपातकालीन उपाय 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहे थे. गैर अत्यावश्यक वैकल्पिक सर्जरी में भी सोमवार से वृद्धि होगी, जिसमें मेलबर्न में निजी अस्पताल सभी वैकल्पिक सर्जरी के 50% तक और क्षेत्रीय क्षेत्रों में 75% तक सर्जरी करने में सक्षम होंगे. स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि अगर कोविड संक्रमण दर और कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी जारी रहती है तो वो अस्पताल प्रतिबंधों में और ढील देने पर विचार कर रहे हैं.
We're confident that while still going to be very, very busy, that we are in a position to safely lift the code brown alert, whilst in many respects looking to build on the cooperation and the system-wide protections that we're able to put in place through that pandemic code brown alert.
New South Wales ने कोविड अस्पतालों में भर्ती की अपनी रिपोर्टिंग को बदल दिया है. हेल्थ डेप्यूटी सेक्रेटरी सुजन पियर्स का कहना है कि राज्य में अस्पतालों में भर्ती होने की रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण रहा, जिसमें पिछले 28 दिनों से आए हर कोविड सकारात्मक परीक्षण करने वाले को गिना गया. सुश्री पियर्स का कहना है कि एक विशेषज्ञ नैदानिक पैनल ने इसे अन्य राज्यों के अनुरूप लाने के लिए इस 28 दिनों की समय अवधि को कम करने की सिफारिश की है.
After the review by our expert clinical panel, we've now reduced that back capture to 14 days to provide a more realistic picture of what we're seeing in our hospitals, and our numbers reflect that. But on any scenario, whether it's 28 days, 14 days, or whatever the number you use, the trend is the same, and in all cases, those numbers are following the same path down.
न्यू साउथ वेल्स में अस्पतालों में इस वायरस से पीड़ित 1716 मामले हैं, जिसमें आईसीयू में 108 हैं. राज्य में 19 मौतें हुई हैं और 8590 नए मामले सामने आए हैं. क्वींसलैंड ने भी नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में कोविड 19 के कारण 14 मौतें दर्ज की हैं, जिनमें सभी 60 से 90 वर्ष की आयु के दशक के लोग हैं. राज्य में 5977 नए मामले दर्ज किए गए हैं. अस्पताल में वायरस से पीड़ित 535 लोग हैं. और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वन ओशन शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे. वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के दौरान किया जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53.75 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा क्रिकेट मैच आज शुक्रवार 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबले में जीत हासिल करके भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई हुई है. और अब टीम की कोशिश रहेगी कि वो तीसरा मैच भी जीतकर 3-0 से सीरीज को जीतें. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बादल छटेंगे, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में बौछारों या तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।